जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन रंजन जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नेतय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर्थ श्री श्री मधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर नेताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त बृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव बृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य बृंद की जय। गौर प्रेम आनंदे ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 4 अध्याय का नाम है गजेंद्र का वैकुंठ गमन। श्लोक संख्या 5 और 6। तो श्लोक संख्या 5 का पाठ मैं स्वयं करूंगा और छठवें का पाठ आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। श्लोक संख्या 5 है। सोनुकंपित ईशेन परिक्रम मैं प्रणम्यतम लोकस्य पश्यतो लोकम समगान मुक्त किल्बिषहा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा से अपने पूर्व रूप को पाकर राजा हुहु ने श्री भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तब ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं की उपस्थिति में वह गंधर्व लोक लौट गया और सारे पाप फलों से मुक्त हो चुका था। अब श्लोक संख्या 6। तो मेरे पीछे बोलिए। गजेंद्रो भगवत स्पर्शन विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश्चतुर्भुजः। गजेन्द्रो भगवत स्पर्श विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश्चतुर्भुजः। गजेन्द्रो भगवत स्पर्श विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश्चतुर्भुजः। बोलिए। चतुर्भुजा ठीक है। और कोई वैष्णव देवियां शब्दार्थ बोलिए। गजेंद्र हाथियों का राजा, गजेंद्र भगवत स्पर्शात श्री भगवान के हाथों का स्पर्श पाने से विमुक्त तुरंत मुक्त हो गया अज्ञान बंधनात सब प्रकार के अज्ञान से विशेषतया देहात्म बुद्धि से प्राप्त पाकर भगवतः श्री भगवान के रूपम वही शारीरिक लक्षण, पीत वासाह पीले वस्त्र पहने, चतुः भुजाः तथा चार भुजाओं वाला, जिनमें वह शंख चक्र गदा तथा कमल लिए था। अनुवाद मेरे पीछे बोले, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हाथियों के राजा गजेंद्र का अपने कर कमलों से सीधा स्पर्श किया था, अतएव वह समस्त भौतिक अज्ञान तथा बंधन से तुरंत मुक्त हो गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसमें उसे श्री भगवान जैसा ही शारीरिक स्वरूप प्राप्त हुआ। वह पीत वस्त्र धारण किए चार भुजाओं वाला बन गया। तो हम जो है तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे और कथा वस्तु क्या है कि गजेंद्र जो बहुत संकट में था, उसके पैर को ग्राह ने पकड़ा हुआ था, तो उसने भगवान को पुकारा और भगवान साक्षात गरुड़ पर सवार होकर के आए और गजेंद्र और ग्राह दोनों को जल से बाहर लाए। फिर भी ग्राह छोड़ नहीं रहा था गजेंद्र के पैर को, तो भगवान ने चक्र से उसका सिर काटा। इस प्रकार से गजेंद्र को संकट से बचाया। और अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि गजेंद्र भगवत स्पर्शात, गजेंद्र जो है भगवान के स्पर्श से विमुक्तो अज्ञान बंधनात, अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। प्राप्तो भगवत रूपम, और उसको भगवान का रूप प्राप्त हो गया। और वो कैसा रूप भगवान का है? पीत वासाः चतुर्भुजाः, पीत वस्त्र धारण किए और चार भुजाओं वाला रूप है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि किसी पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होती है और वे उसका स्पर्श अपने हाथ से कर देते हैं, तो उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है और वो भगवत धाम वापस जा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अगर भगवान की कृपा होगी और स्पर्श अपने हाथ से कर दें भगवान, है ना, तो क्या होगा, शरीर आध्यात्मिक बन जाएगा, है ना। तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि बिजली का करंट, है ना। तो भगवान का जो शरीर है पूर्ण आध्यात्मिक है, है ना, और भगवान के हाथ का स्पर्श अगर हो जाए, है ना, तो क्या हो गया, आध्यात्मिक करंट, ये जो है आध्यात्मिक स्पर्श है भगवान का, है ना। तो सामान्य स्पर्श नहीं है, है? जैसे कि दूषित वस्तु को स्पर्श करके आप दूषित हो जाते हैं, आपको स्नान करना पड़ता है, है ना। जैसे हड्डी है या मल है, अगर छूते हैं तो आपको स्नान करना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान का जो पूरा शरीर है वो कैसा है, आध्यात्मिक है। तो भगवान का शरीर जो है उसमें भौतिकता बिल्कुल नहीं है। और जो मायावादी लोग भगवान के शरीर को भौतिक मानते हैं, तो वे बहुत अपराधी हैं, मायावादी, कृष्ण अपराधी। जो मायावादी होते हैं वो भगवान के शरीर को कैसा मानते हैं कि तीन गुणों में से सत्व गुण से भगवान का शरीर है, सत्व गुण से बना है, है ना। तो वो यही सोचते हैं कि भाई हमारा जो शरीर है उसमें रजोगुण है और दूसरे शरीर है तमोगुणी है, भगवान का शरीर सत्वगुण है, तो सत्वगुण है तो उत्तम, तो भगवान के शरीर को उत्तम तो मानते हैं, है ना। लेकिन फिर भी वो भौतिक है, सात्विक, है ना। सात्विक शरीर देवताओं का भी होता है, सत्वगुणी शरीर देवताओं का भी होता है, देवताओं के शरीर में भी पसीना नहीं निकलता, उनके शरीर में भी मलमूत्र नहीं होता। देवताओं का शरीर भी पृथ्वी को छूता नहीं, पृथ्वी के से ऊपर रहता है उनका शरीर। जब चलते हैं तो पृथ्वी को छू करके नहीं चलते हैं, पृथ्वी के ऊपर से चलते हैं। लेकिन फिर भी देवताओं का शरीर आध्यात्मिक नहीं है और भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। तो जो व्यक्ति भगवान के शरीर की देवताओं से तुलना करता है कि देवताओं जैसा शरीर है, सत्वगुण से बना है, तो मायावादी। मायावादी का मतलब है कि भगवान का शरीर भी माया से बना है। तो वे यही मानते हैं कि जो निराकार तत्व है वो जो है शुद्ध है, जिसमें आकार नहीं है, और जब आकार बनता है तो वो माया के गुणों से ही आकार बनता है। तो ये लोग जो है कृष्ण के अपराधी हैं, और बहुत ये लोग जो है अशुद्ध होते हैं, उनको बहुत अशुद्ध माना जाता है। जो वेत्ति बहुत कम दे हम कृष्ण से परमात्मनः सर्वस्मात् बहिष्कार्यः स्रोत स्मार्त विधान्यतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचल स्नानम आचरेत। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, तो उसको जो है सभी प्रकार के अपने कार्यक्रमों से उसको बाहर निकाल देना चाहिए। सामाजिक अपने जितने भी कार्य हैं और पारिवारिक कार्यों से उसको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, अपने समाज से परिवार से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। और इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसका मुंह देखने से वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। इतना अशुद्ध है, देखने से ही आप अशुद्ध हो जाएंगे। वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए, कितना मतलब ये अशुद्ध है वो व्यक्ति, बहुत अशुद्ध है, बहुत अपराध। चाहे वो जो है अपने को अपराधी नहीं मानते हैं, वो तो मानते हैं कि भाई भगवान का शरीर सत्वगुण से बना है, तो सत्वगुण जो है वो श्रेष्ठ है। माया के तीन गुणों में सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन तो भी वो माया से निर्मित मानते हैं कि माया से निर्मित है भगवान का शरीर। मायावादी, भगवान का रूप जो है वो माया मानते हैं। भगवान के नाम, भगवान के गुणों को जो है वो क्या है, वो माया मानते हैं। कोई भी रूप है वो कहते हैं माया से ही बनता है, लेकिन भगवान का जो दिव्य रूप है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्व से जानता है मेरे जन्म कर्म दिव्य है, माया से परे हैं, माया से ऊपर है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्धन, वो देह त्यागने के बाद मेरे धाम में आता है। तो मायावादी कृष्ण अपराधी, इसलिए मायावादियों से जो है हमारे जितने भी आचार्य हैं वो बहुत नफरत करते हैं और उनकी निंदा करते हैं। आप कहेंगे नहीं, निंदा तो किसी की नहीं करना चाहिए, निंदा तो किसी की नहीं करना चाहिए, लेकिन वो निंदा की बात है, निंदनीय है। शास्त्र भी निंदा करते हैं, अगर आप निंदा नहीं करते हैं तो आप भी निंदनीय हैं, तो आप भी जो है वैष्णव नहीं है, आप भी जो है आप भी वैष्णव के समाज से दूर कर दिए जाएंगे अगर आप निंदा नहीं करते। हमारे सब लोग निंदा करते हैं मायावादियों की। यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, पूर्ण आध्यात्मिक, भगवान का शरीर पूर्ण आध्यात्मिक है। देखो क्या कितना बड़ा परिवर्तन, गजेंद्र का जो है भगवान ने स्पर्श किया और हाथी का शरीर उसका जो है छूट गया और उसको जो है भगवान जैसा शरीर प्राप्त हो गया। और भगवान जैसा शरीर प्राप्त हो गया, पीत मास सास चतुर्भुजा, पीत वस्त्र धारण किए, चार भुजाएं धारण किए, तो इसमें फिर यो रही यो वो नहीं है कि पीले कपड़े अलग से मिले होंगे तो उसने पहने होंगे, कपड़े बदले होंगे ऐसा नहीं है कि कपड़े बदले होंगे। वो वस्त्र भी जो है दिव्य हैं, वो भी आध्यात्मिक हैं, वो भी कभी गंदे नहीं होते हैं कि उनको भी धोना पड़ेगा पीत वस्त्र है। और चार भुजाएं भी, तो ऐसा नहीं चार भुजाएं जो है धीरे धीरे निकली होंगी, या शरीर भी छोटा हुआ होगा, छोटे से बड़ा हुआ होगा, खाने पीने से शरीर बड़ा हुआ होगा, ऐसा नहीं है। पूर्ण विकसित शरीर हो गया, भगवान का है, क्षमा करिए गजेंद्र का, गजेंद्र का जो है भगवान जैसा शरीर, और इस शरीर में जो आ जाते हैं भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं तो वे अपने को भगवान नहीं समझते हैं, है? कोई देख करके उनको कहेगा कि अरे ये तो भगवान है, वो तुरंत मना करते हैं, अरे नहीं 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 मुझे प्रणाम मत करो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। तो इस तरह कृष्ण भावनामृत, कृष्ण चेतना की अवस्था में वो रहते हैं कि वो कभी भी जो है इस प्रकार का जो है भाव पैदा नहीं करते हैं कि कोई उनको समझे है कि मैं भगवान हूँ। अब यहाँ भौतिक संसार में क्या है, इस भौतिक संसार में शरीर में पसीना आ रहा है, शरीर में जो है सब मल मूत्र भरा हुआ है और अपने को भगवान बता रहे हैं, और जिनको और जिनको ऐसा शरीर प्राप्त हो गया भगवान जैसा आध्यात्मिक शरीर है, वो अपने को भगवान नहीं बताते, वो अपने को भगवान नहीं सोचते है ना। ऐसी कई घटनाएं हैं, गोप कुमार की भी घटना है बृहत भागवतामृत में है कि 10 सूर्यों के समान तेजस्वी एक जो है व्यक्ति है वैकुंठ में जा रहा है, है? 4 भुजाएं हैं, है? 10 सूर्यों के समान तेज है, 4 भुजाएं पीत वस्त्र धारण किए, और गोप कुमार समझा कि ये भगवान है तो प्रणाम किया, बोले अरे अरे नहीं 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 मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उनका दास हूँ, है? और सबसे मना करके कि प्रणाम मत करो मुझे, और चला गया वैकुंठ में। ऐसी बहुत सी घटनाएं। तो ये भौतिक संसार जो है ये इसलिए बना है कि यहां पर हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें और अपने इस प्रकार की चेतना जो है बनाएं कि हम उनके नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। इस भौतिक संसार में क्या होता है, कोई जो है पहले जो नौकर था आगे चल करके बॉस बन जाता है ना। तो कोई सोचे कि ऐसी ठीक है, हम भी जो है अभी भगवान के सेवक हैं और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और आगे चल करके फिर हम भी भगवान बन जाएंगे, तो ये विचार जो है जड़ से निकाल देना चाहिए। जड़ से निकाल देना चाहिए। कोई सोचता है कि आग की चिंगारी जो है, अभी जो आग की चिंगारी है तो उसको जो है हम कुछ हवा देंगे और उसमें कुछ और ईंधन डालेंगे तो प्रज्वलित अग्नि बन जाएगी, उसी प्रकार से हम भी भगवान के अंश हैं और आगे चल करके हम भी जो है अपने गुणों को विकसित करके भगवान बन जाएंगे। ये सब जो विचार हैं अच्छी तरह से इनको ध्वस्त करके नष्ट करके जब आप अपने को समझे हैं कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, नित्य दास है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो हम नित्य दास हैं है? तो कभी भी हम भगवान नहीं बन सकते। भौतिक संसार में होता है कि जो कंपनी का पहले सबसे छोटा नौकर था वो जो है कंपनी का मालिक बन जाए, जैसे कि भगवान चैतन्य की लीला में सुबुद्धि राय थे, तो सुबुद्धि राय जो है बहुत बड़े अधिकारी थे और उनके नीचे हुसैन शाह है जो है मुसलमान एक लड़का था उनके नीचे था, और उसने कुछ गलती की तो उसको चाबुक मार दिया तो पीठ में चाबुक का निशान बन गया। आगे चल करके वो हुसैन शाह जो सुबुद्धि राय के नीचे था आगे चल करके बहुत बड़ा बादशाह बन गया, बंगाल का शहंशाह बन गया हुसैन शाह है ना। उसकी पत्नी ने देखा हाँ कि पीठ में चाबुक के निशान है, ये क्या है, तो बोले सुबुद्धि राय जो है हमारे पिता के समान थे और उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, लेकिन कभी गलती की थी मैंने तो उन्होंने चाबुक मारा। तो उसकी पत्नी बोली नहीं नहीं उनकी हत्या करो, अब तो हुसैन शाह वो सुबुद्धि राय आपसे नीचे हैं। बोले नहीं मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता, वो तो मेरे पिता जैसे हैं। तो ठीक है तो उनको मुसलमान बना दो, तो सुराही का पानी जो है डाल दिया तो सुबुद्धि राय जो है मुसलमान। अब कैसे होगा वो तो अलग घटना है, मतलब क्या हुआ सुबुद्धि राय की फिर कैसे रक्षा हुई अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि भौतिक संसार में आज जो नीचे से नीचे नौकर है वो हो सकता है कि आगे चल करके वो सबसे ऊपर का जो है मालिक बन जाए। इस तरह से लोग सोचते हैं कि हम भी भगवान के जो है सेवक के सेवक के सेवक हम अगर हैं अभी तो आगे चल करके हम भी भगवान बन जाएंगे, भगवान के जैसे बन जाएंगे, भगवान के समान बन जाएंगे, तो ये गलत है। भगवान अपने भक्त को अपने जैसा बना लेते हैं, लेकिन भक्त जो है अपने को भगवान के जैसा नहीं समझता, वो हमेशा दास की चेतना में रहता है और भगवान जैसा होता है और दास की चेतना में रहता है। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप भगवान जैसे बने, भगवान का सब सुख प्राप्त करें और अपने को भगवान ना समझें। या फिर दूसरी स्थिति क्या है कि आप जो है अपने को भगवान समझें और यहाँ संसार में सड़ते रहें, जन्म मरण के चक्र में सड़ते रहो, तो क्या अच्छा है? अपने को भगवान समझना और संसार के जन्म मरण के चक्र में सड़ते रहना, ये ज्यादा अच्छा है? या वो अच्छा है कि अपने को भगवान का सेवक समझना और भगवान जैसे जो है सुख प्राप्त करना, भगवान का पूरा सुख प्राप्त करें? तो कृष्ण भावना मृत संघ है, प्रभुपाद ने जो है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मृत संघ जो आंदोलन है, जो इसको फैलाया है पूरी दुनिया में, चैतन्य महाप्रभु ने भारतवर्ष में फैलाया और प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में फैलाया। तो यही एक आंदोलन है जो कि रक्षा कर रहा है और हमें वैकुंठ जाने का अधिकारी बना रहा है। तो आप वैकुंठ जाने के अधिकारी इस प्रकार से बन सकते हैं जब पूर्ण रूप से आप दास भावना में आते हैं कि मैं दास हूं, है ना। गोपी भर्तु पद कमलियोर दास दासानु दासः, मैं दास के दास का दास हूं। चैतन्य महाप्रभु है आपने आचरी प्रभु जीवेरे से कहा है, तो भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण है साक्षात, अपने आचरण से जीव को सिखा रहे हैं कि जीव क्या सोचे अपने को कि मैं उनका दास बनने लायक भी नहीं हूँ तो उनके दास का दास हूँ, और उनके दास का दास बनने लायक नहीं हूँ तो उनके दास के दास का दास हूँ, और 100 बार नीचे 1000 बार नीचे दास का दास बन जाएं तो भी बहुत सुरक्षित हैं और बहुत बड़ी रक्षा होती है कि हम माया के दास ना बने। और जब कोई व्यक्ति अपने को जो है दास नहीं मानता है, अपने को स्वामी मानता है, तो माया जो है उसको अपना स्वामी बताती है कि हाँ तुम मेरे स्वामी हो तो मुझे भोगो, और लातें मारती है, लातें खाता है माया की, और मैं कहती बस अब तो हो गया, अब तो तुम मेरे स्वामी बन जाओ, अब तो तुम भोक्ता बन जाओगे, भोगी बन जाओगे, हैं, और फिर लात मारती है। इस प्रकार से लगातार लातें मारती है और उसको सिखाती रहती कि तुम मालिक हो, तुम स्वामी हो, तुम भोक्ता हो, तुम नियंता हो। माया की इस तरह की जो है ये नीति है, इस प्रकार की नीति है, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो लिख रहे हैं कि भगवान के स्पर्श से उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है और वो भगवत धाम वापस जा सकता है। जब आगे जब श्री भगवान ने गजेंद्र का स्पर्श किया तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ध्रुव महाराज को भी आध्यात्मिक शरीर इसी प्रकार मिला था। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ध्रुव महाराज को भी आध्यात्मिक शरीर इसी प्रकार मिला था, है ना। तो किस प्रकार मिला था, क्या घटना है ध्रुव महाराज की आध्यात्मिक शरीर मिला? जब भगवान ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए, वो 5 वर्ष का बालक था, वो तो उनकी स्तुति वंदना करना नहीं जानता था, तो उसके मन में बड़ी इच्छा हुई कि मैं भगवान की स्तुति वंदना करूं। तो बालक जो है 5 वर्ष का बालक, उसे कुछ पता नहीं कैसे स्तुति वंदना करूं। तो भगवान ने क्या किया, अपने शंख से जो है उसके गाल में स्पर्श किया, अपने शंख का स्पर्श उसके गाल में कर दिया, और जैसे गाल में स्पर्श हुआ उसको पूर्ण ज्ञान हो गया। तो आध्यात्मिक शरीर इसी को ही कह सकते हैं। अभी ध्रुव महाराज का 4 भुजाओं का शरीर नहीं हुआ कि पीत वस्त्र धारण के 4 भुजाओं का शरीर हो गया, फिर भगवान ने शंख का स्पर्श किया तो उसको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। हाँ, तो वो ऐसा नहीं था कि उसके चार भुजाएं जो है हो गया और पीत वस्त्र धारण के चार भुजाओं का शरीर हो गया, लेकिन तो भी वो आध्यात्मिक शरीर हो गया, क्योंकि इस शरीर में अब उनकी मृत्यु नहीं होगी, इस बालक की मृत्यु नहीं होगी इस शरीर में है? और ये बालक 36,000 साल तक राज्य भी करेगा, तो शरीर बड़ा होगा, 5 वर्ष की अवस्था का जो शरीर है वो बड़ा होगा और 36,000 साल तक राज्य भी करेगा, और उसके बाद फिर वो शरीर उसी शरीर से ये जो है वैकुंठ जाएगा, ध्रुव लोक जाएगा। तो ध्रुव महाराज ने जो है अपने शरीर को बदला नहीं, उनकी इच्छा नहीं थी कि वे चार भुजाओं का शरीर प्राप्त करें, पीत वस्त्र धारण की चार भुजाओं का शरीर प्राप्त करें, उनकी इच्छा थी कि अपने इसी शरीर से जाएं। तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके उन्होंने विमान पर आरोहण किया। जो विमान आया वैकुंठ से तो उसमें चढ़ने के लिए मृत्यु के सिर पर पैर रखा उन्होंने, तो अपने उसी शरीर से, वो शरीर ही आध्यात्मिक था उनका, मैं दो भुजाओं का शरीर था। और सुनीति के पुत्र अपनी पहचान भी करते हैं अपने माता के साथ कि मैं सुनीति माता का पुत्र हूं। तो उसी प्रकार उसी शरीर से वो विमान जाते हैं, ध्रुव लोक में जाते हैं, और वहां जाते हुए भी जो है वो यही सोच रहे हैं कि मैं अपनी माता को छोड़ के क्यों जा रहा हूं, मैं मेरी माता ने तो मुझे दिशा दिखलाई थी कि मैं वन में जाऊं और भगवान की शरण लूं। तो ध्रुव महाराज को जो है जो भगवान के पार्षद थे वो उनके समझ गए उनके मन में क्या चिंता है, तो उन्होंने उनको दिखाया कि ध्रुव महाराज का विमान जिस प्रकार जा रहा था, जिस दिशा में जा रहा था, उसी दिशा में आगे एक विमान जा रहा है जिसमें ध्रुव महाराज की माता सुनीति बैठी है। तो माता सुनीति ने भी अपना शरीर नहीं बदला, वो ध्रुव महाराज की माता के रूप में उसी प्रकार दो भुजाओं की देवी हैं, माता हैं है? तो माता और पुत्र दोनों गए ध्रुव लोक में। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर अपनी इच्छा के अनुसार वैकुंठ जाना चाहता है, अपने उसी शरीर से जाना चाहता था, तो उसी शरीर से जाएगा। तो ध्रुव महाराज ने भी शरीर नहीं छोड़ा, गजेंद्र ने अपना शरीर छोड़ दिया और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया, ध्रुव महाराज ने अपना वो भौतिक शरीर भी नहीं छोड़ा, वो शरीर ही वही शरीर आध्यात्मिक हो गया। माता सुनीति ने भी अपना शरीर नहीं छोड़ा, वही शरीर से वो चली गई, वो शरीर ही आध्यात्मिक हो गया। और गजेंद्र का शरीर आध्यात्मिक हो गया, इसका कारण क्या है तो हम पीछे देखेंगे। गजेंद्र ने जो स्तुति की थी भगवान की, तो उसमें 3 अध्याय का 19वां श्लोक है जिसमें वो गजेंद्र कहता है किम चासे सोराते भी देहम अभ्ययम रोत में दृदय विमुक्षणम है, कि मुझे जो है इस भौतिक शरीर जो हाथी का शरीर है उसमें नहीं रहना है, है? और भगवान जो है अगर कृपा करते हैं तो अविनाशी शरीर दे देते हैं। तो गजेंद्र हाथी के शरीर मैं नहीं रहना चाहता था, है ना, उसको अविनाशी शरीर चाहिए, तो उसको जो है वैसा शरीर मिल गया, है ना। तो यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज को भी आध्यात्मिक शरीर इसी प्रकार मिला था। आगे अर्चना पद्धति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरीर स्पर्श करने का सुअवसर मिलता है। अब यहां पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, डीटी वर्शिप जो अर्चा विग्रह है मंदिर में, तो भगवान का जो अर्चा विग्रह है मंदिर में जिनका हम दर्शन करते हैं वो भी पूर्ण आध्यात्मिक है, वो भी पूर्ण आध्यात्मिक है, है ना। लेकिन अंतर यही है कि अगर आप इनको पत्थर की मूर्ति समझते हैं तो पत्थर की मूर्ति जैसा ही वो व्यवहार करेंगे, तो छू लो कुछ भी कर लो वो पत्थर की मूर्ति जैसे ही करेंगे, है। और अगर आप जो है समझते हैं, इसलिए भगवान की अर्चा पूजा जो पुजारी करते हैं तो उनको बहुत आवश्यक है कि वो सब नियमों का पालन करें, है ना, अपराधों से बचें। तो भगवान की पूजा के भी 32 अपराध होते हैं, उनसे बचें। और विशेष रूप से नाम अपराधों से, 10 नाम के 10 अपराधों से बचें। तो नाम के 10 अपराधों से कोई बचता है तो फिर वो जो है उसकी रक्षा हो जाती है, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्चा पद्धति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरीर स्पर्श करने का सुअवसर मिलता है, जैसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने का सौभाग्य मिल सकता है। तो आज सौभाग्य मिल सकता है, प्रभुपाद कह रहे हैं मिल सकता है सौभाग्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने का, लेकिन सौभाग्य पाने के लिए मतलब यह है कि पुजारी मतलब क्या करे, अपराधों से बचे, है? तो पूजा के अपराधों, सेवा के अपराध, पति सेवा अपराध, उनसे बचे तो उसको भी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो सकता है पुजारी को, है ना। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत बड़ा अवसर है, है? तो जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं तो उनको पूजा का अवसर मिलता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, और भगवत धाम वापस जाया जा सकता है, ना केवल श्री भगवान के शरीर का स्पर्श करके अभी तो केवल उनकी लीलाओं का श्रवण करके। अब देखो प्रभुपाद कितना मतलब इस संबंध में हमको बता रहे हैं कि बहुत अवसर है। अब आपको जो है अगर भगवान की पूजा करने का अवसर नहीं मिलता है तो आप क्लास सुन रहे हैं, आप जो क्लास सुन रहे हैं तो इससे भी आपको जो है आध्यात्मिक स्पर्श प्राप्त हो रहा है ना। ये भी आध्यात्मिक स्पर्श है कि आप श्रवण कर रहे हैं, है ना। तो क्या है, केवल उनकी लीलाओं का श्रवण करके, उनकी महिमाओं का गान करके, उनके चरणों का स्पर्श करके और उनकी पूजा करके, दूसरे शब्दों में श्री भगवान की किसी न किसी प्रकार से सेवा करके व्यक्ति भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाता है। तो ये भी आध्यात्मिकरण है, ये भी आध्यात्मिकरण की विधि है। तो कोई पूजा में लगा हुआ है और कोई श्रवण में लगा हुआ है, है ना। जो है क्लास जो प्रभुपाद ने बनाया नियम इस्कॉन के मंदिरों में सवेरे श्रीमद् भागवत की कक्षा और शाम की गीता की कक्षा, इस्कॉन के मंदिरों की ये विशेषता है और दूसरे मंदिरों में है ऐसा नहीं है। इस्कॉन के मंदिरों की ये विशेषता है, है ना। तो इस्कॉन के जो भक्त हैं तो तभी कहलाते हैं जो कि सवेरे शाम क्लास में बैठे। तो प्रभुपाद जो है इसको बहुत जोर देते हैं कि क्लास में बैठना चाहिए, है ना। तो यहाँ प्रॉपर लिख रहे हैं कि केवल इस भगवान का इस स्पर्श ही नहीं है बल्कि उनकी किसी न किसी प्रकार से सेवा करके। तो 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति, तो 9 प्रकार की भक्ति में से किसी भी एक भक्ति में आप जो है अगर हमेशा लगे रहते हैं तो आपका आध्यात्मिकरण हो रहा है, आपका शुद्धिकरण हो रहा है, है? आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान का स्पर्श पाने का ये परिणाम होता है, जो शुद्ध भक्त है अन्याभिलाषिता शून्यम, जो शास्त्र एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों के अनुसार कर्म करता है वो निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वचनों के अनुसार कर्म करना, तो भगवान की जो आज्ञा है उसके अनुसार कर्म करना। और भगवान की आज्ञा अब सीधे हमें तो नहीं मिलेगी, भगवान की आज्ञा हमें, भगवान की आज्ञा कैसे मिलती है, शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य। तो जब तीनों एक मत हो जाएं, शास्त्र में जो कहा है वही साधु ने कहा, वही आचार्य ने कहा, तीनों एक मत हो जाए, वो हमारे लिए निश्चित है कि हमें वो करना है ना। जैसे आप क्लास में बैठते हैं तो इसमें जो है शास्त्र हैं, साधु, आचार्य, तीनों एक मत हैं कि आपको सुनना चाहिए ना। नाम के जो 10 अपराध हैं, है ना, तो शास्त्र हैं, साधु, आचार्य, तीनों एक मत हैं, नाम के 10 अपराधों से बचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो कुछ हैं डूज और कुछ हैं डोंट्स। डूज का मतलब विधि और डोंट्स का मतलब निषेध है। तो कुछ आपकी विधि है और कुछ निषेध हैं जिनमें आपको जो है मतलब रहना है, उस विधि निषेध में रहना है, है ना। तो क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान का स्पर्श पाने का ये परिणाम होता है। आगे, जो शुद्ध भक्त है अन्याभिलाषिता शून्यम, जो शास्त्र एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों के अनुसार कर्म करता है वो निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है, वो भी गजेंद्र की तरह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवत धाम लौट जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है। तो प्रभुपाद जो है इस श्लोक का मतलब तात्पर्य दे करके पूरा संदेश दे रहे हैं, पूरी बात बताते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं ये बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं प्रभुपाद के तात्पर्य हैं। और श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में जो है प्रभुपाद इतना तात्पर्य दे देते हैं कि हमें जो है पूरी बात मिल जाती है, पूरा ज्ञान मिल जाता है, है ना। तो इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुना रहा हूँ। गजेंद्र भी प्रभु का स्पर्श पाकर अज्ञान बंधन से मुक्त हुआ। गजेंद्र भी प्रभु का स्पर्श पाकर अज्ञान बंधन से मुक्त हुआ। प्रभु कृपा से उसको भी प्रभु स्वरूप ही प्राप्त हुआ। प्रभु कृपा से उसको भी प्रभु स्वरूप ही प्राप्त हुआ। चतुर्भुज रूप हुआ उसका, पीताम्बरधारी वह हुआ। चतुर्भुज रूप हुआ उसका, पीताम्बरधारी वह हुआ। प्रभु के प्रिय पार्षद का रूप ही उसको मिल गया। प्रभु के प्रिय पार्षद का रूप ही उसको मिल गया। तो इस श्लोक की हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में। तो अब हमारे पास समय है तो आपको उठ के नहीं जाना चाहिए कि अब प्रश्नोत्तर में आपको बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रश्नोत्तर में क्या है, मंथन होता है और मंथन से अमृत मिलता है, है ना। कथा भी एक समुद्र है और जब कथा का मंथन किया जाता है तो उसमें कथा का अमृत मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक व्यक्ति भी अगर प्रश्न करता है तो सब लोग पवित्र होते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरा प्रश्न तो नहीं है कि कोई और प्रश्न कर रहा है तो मुझे क्या करना उससे, है ना। एक व्यक्ति भी प्रश्न करता है, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीन पुनाति ही। तो भगवान की कथा में कोई प्रश्न अगर किया जाता है तो तीन प्रकार के लोग पवित्र होते हैं। वक्तारम, सबसे पहले तो वक्ता पवित्र होता है, जो सुनाने वाला पवित्र होता है। वक्तारम पृच्छकम, फिर पूछने वाला पवित्र होता है। फिर स्त्रोत्र, जितने सुनने वाले हैं सब पवित्र होते हैं, ठीक है ना। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे गंगा जी का जल है तो गंगा जी का जल भी जो है तीन प्रकार के लोगों को पवित्र करता है। जो स्नान करता है वो तो पवित्र होता ही है, है ना। और जिसने रास्ता बताया तो वो भी पवित्र होता है, और स्नान करने वाले के जितने संगी साथी हैं वो भी पवित्र होते हैं। तो भगवान की कथा में जो प्रश्न होता है, प्रभुपाद ने प्रश्नोत्तर का जो नियम बनाया है तो वो इसलिए नहीं बनाया है कि एक व्यक्ति का प्रश्न है तो वो जो है उसी को ही लाभ होगा, है ना। और सब लोग प्रश्न कर भी नहीं सकते, लेकिन एक व्यक्ति के प्रश्न से भी सबको लाभ होता है। ये संभव नहीं है कि सब लोग प्रश्न करें और हर व्यक्ति को जो है प्रश्न, जैसे गीता में भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेविया, कि आप जो है प्रश्न से और सेवा से और प्रणाम से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना। तो अब जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति प्रश्न करे, सबको जो है लाभ होता है, सबकी जो है शुद्धिकरण होती है अगर कोई एक व्यक्ति प्रश्न करता है। या समीक्षा, आप अपनी ओर से कोई समीक्षा कर सकते हैं और कोई प्रश्न कर सकते हैं। तो आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई विचार है, कोई प्रश्न है, कृष्ण कुमार प्रभु इनको हैंड माइक दीजिए, हैंड माइक है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर प्रवचन का। तो एक थोड़ा सा विरोधाभास दिखाई देता है, उसको थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर तो लिखा है कि जो घड़ियाल है वो गंधर्व का शरीर लेकर के गंधर्व लोक वापस चला गया, और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि वो इसी जीवन में जो है भगवान का परिकर बन गया और वैकुंठ लोक चला गया। तो दोनों में थोड़ा सा विरोधाभास दिखता है, इसमें क्या, इसको कैसे अच्छा, समझना चाहिए।
बहुत अच्छा। देखिए इस तरह से मंथन होता है कि किसी व्यक्ति ने जो है सुना और फिर उसका मनन किया, मंथन किया, तब प्रश्न उठता है, है ना। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि श्लोक संख्या 5 में ये बताया गया है कि जो मगरमच्छ था है, तो वो हुहू नाम का गंधर्व था, उसको तो गंधर्व का शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी उसका भी आध्यात्मिकरण हुआ। गजेंद्र को जो वैकुंठ का शरीर प्राप्त हुआ तो उसकी इच्छा थी कि वो इस हाथी के शरीर में नहीं रहना चाहता, ये हाथी के शरीर में बहुत अज्ञान भरा हुआ है, मैं इसमें नहीं रहना चाहता, उसने अपनी इच्छा प्रकट की थी। तो उसकी इच्छा के अनुसार उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया और वैकुंठ में चला गया। लेकिन जो हुहू नाम का गंधर्व था वो पापों से मुक्त हो गया, वो पापों से मुक्त हो गया है ना। तो उसने भी भगवान को प्रणाम किया, इसमें कहा ना कि सोनुकंपित ईशेन परिक्रम में प्रणम्यतम, तो उसने भगवान की परिक्रमा की, उसने भगवान को प्रणाम किया। लोकस्य पश्यतो लोकम समगान मुक्त किलबिषहा, तो सब लोगों के देखते हुए वो जो है अपने गंधर्व लोक में चला गया। तो हुहु नाम का गंधर्व है तो वो भी पापों से मुक्त हो गया। अगर पापों से मुक्त हो जाए तो फिर भगवान गीता 7वें अध्याय का 28वां श्लोक क्या कहते हैं, ये साम तुंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो जो जिनके पाप समाप्त हो चुके हैं है, और बहुत है, उनके पुण्य कर्म इकट्ठे हो गए हैं, द्वंद के मोह से मुक्त होकर के वो दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। तो वो हुहु नाम का गंधर्व है, उसका भी जो है वैकुंठ का मार्ग खुल गया। तो आध्यात्मिकरण भगवान का जो है स्पर्श है वो आध्यात्मिकरण करता है, तो उसका भी शरीर आध्यात्मिक हो गया और उसको भी अब जो है वैकुंठ का रास्ता मिल गया। जैसे ध्रुव महाराज का भी, ध्रुव महाराज के भी हमने चर्चा की कि ध्रुव महाराज के शरीर में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, भगवान ने केवल शंख का स्पर्श किया था और वो जो है उनको पूरा ज्ञान हो गया। अब ध्रुव महाराज को जो है गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, ध्रुव महाराज को पूरा ज्ञान हो गया। फिर बाद में कहीं नहीं आता कि उन्होंने कोई गुरु बनाया, या हो सकता है गुरु बनाया हो, जो भी हो, लेकिन उनको मतलब भगवान ने उनको आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया और मतलब बड़ी सुंदर स्तुति की। तो ध्रुव महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की और फिर भगवान ने कहा 36,000 साल तक तुम राज्य करो, उसके बाद फिर तुम मेरे लोक में आओगे। तो फिर वो जो है फिर भगवान के धाम में चले गए। तो मतलब कहने का यह है कि गंधर्व को भी जो है भगवान के लोक में जाने का मार्ग मिल गया। हाँ माता जी,
लेकिन इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी जीवन में वो भगवान का परिकर बन गया, तो ये समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है।
इसी जीवन में भगवान का परिकर, तो गजेंद्र जो है ना, गजेंद्र जो है ये महाराज इंद्रद्युम्न थे और बहुत जो है वो शुद्ध भक्त ही थे, बहुत शुद्ध भक्त थे। उनको गजेंद्र का जो शरीर मिला तो इसमें भी कुछ उनका प्रारब्ध था, कभी कुछ प्रारब्ध था। अगस्त मुनि आए, उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया, अब जो भी कारण हो, अगस्त मुनि ने श्राप दिया, तो वो कुछ प्रारब्ध होता है ऐसा कि उसको जो है भोगना पड़ता है। तो जैसे भरत महाराज थे तो उन्होंने भी जो है वन में आकर के तपस्या की थी और फिर हरिण में आसक्त हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनका कुछ प्रारब्ध था। शिक्षा के लिए तो हम लोग बताते हैं भाई उन्होंने गलती की कि हरण में मतलब उन्होंने आसक्ति अपनी जो है विकसित कर ली, तो ये गलती हम शिक्षा के लिए हम बताते हैं उन्होंने गलती की। लेकिन अगर उनके पक्ष में देखा जाए, भरत महाराज के पक्ष में देखा जाए, तो ये प्रारब्ध के अनुसार जो है ऐसी जो है वो बातें मतलब बनी, इस प्रकार की घटनाएं हुई कि उनको हरण का शरीर मिलना था, तो ये जो है कारण इस तरह से बन गया हरण का शरीर। तो हरण का शरीर मिल गया, उसके बाद फिर अगले जीवन में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ और फिर भगवान के धाम चले गए। तो यहाँ पर यही समझना है कि कुछ प्रारब्ध होता है किसी का, जिस तरह से होता है। लेकिन दूसरा सिद्धांत यह है कि भगवान के स्पर्श से उसका शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। अब वो जरूरी नहीं कि इस जीवन में जाए, यहाँ के प्रभुपाद कहते हैं कि वो वापस जा सकता है, उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है, वो भगवत धाम वापस जा सकता है। तो जा सकता है का मतलब संभावना है कि इसी जीवन में जाए, या हो सकता है कि और भी कुछ समय लगे, लेकिन आध्यात्मिकरण तो हो जाता है, है? तो उसकी चेतना अगर शुद्ध हो जाती है तो फिर निश्चित है कि वो भगवान के धाम में जाएगा। ठीक है, तो माता जी
हरि बोल। प्रभु जी ब्रिज से बाहर तो बहुत से लोग इतने नास्तिक हैं कि जो देवी देवताओं को भी नहीं मानते हैं, तो उनसे तुलना करें तो क्या ये मायावादी कृष्ण को सतोगुणी मानने वाले ये ठीक हैं क्या?
आपका प्रश्न क्या है? देवताओं की जो पूजा करते हैं?
नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं दिल्ली वगैरह, दिल्ली कलकत्ते में, जो देवी देवताओं को भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते हैं, इतने नास्तिक हैं। तो उनसे तुलना की जाए तो मायावादी भगवान को सतोगुणी मानने वाले ठीक हैं क्या?
अच्छा, इनका ये प्रश्न है कि कुछ लोग हैं जो देवी देवताओं को भी नहीं मानते, बिल्कुल नास्तिक हैं, तो अगर उनसे मायावादियों की तुलना की जाए, अच्छा प्रश्न है, तो मायावादियों की तुलना की जाए तो वो मायावादी उनसे ज्यादा अच्छे हैं या कैसे हैं? अच्छा है प्रश्न, अगर मायावादियों की तुलना की जाए तो देखिए, जब ये बताया गया कि उनको देख करके क्या है, वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए, इसका मतलब बहुत निंदनीय है, मायावादी बहुत निंदनीय है। और प्रभुपाद बताते हैं कि ये सबसे बड़ा जो है ये नुकसान करते हैं समाज का, जो मायावादी लोग होते हैं वो समाज का सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, जो भगवान को जो है माया निर्मित, भगवान के रूप को माया निर्मित मानते हैं, और वो जो है अपने, वो हमारी प्रशंसा करते हैं, मायावादी लोग जो है हमारी प्रशंसा करते हैं, क्या कहते हैं, इस्कॉन वाले अच्छे हैं, ये भक्ति में लगे हुए अच्छे हैं, और क्या कहते हैं कि भक्ति में लगे रहो, इसी प्रकार, इसी प्रकार भक्ति में लगे रहो, और एक दिन क्या हो जाएगा, तुम्हारी भक्ति भी और भक्त भी और भगवान भी सब एक हो जाएंगे। कहते हैं भक्ति करते करते आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचोगे कि भक्ति, भगवान और भक्त तीनों एक हो जाएंगे। तो वो हमारी प्रशंसा करते हैं और हम उनकी निंदा करते हैं। तो बहुत अज्ञान है, बहुत अज्ञान है, आप समझे ना। तो पाखंड बहुत फैलता है कलयुग में, पाखंड बहुत फैलता है ना। तो अब यही है कि पाखंड तो है कलयुग में, बहुत पाखंड है, और भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो जो व्यक्ति अपने को धोखा देना चाहता है उसको धोखेबाज से मिला देते, और जो व्यक्ति सच्चा रास्ता पाना चाहता है तो उसको जो है सच्चे साधु से मिला देते। इसलिए जो है धोखा जो है कलयुग में पाखंड है, और साथ साथ जो है ये सच्चा रास्ता भी है, ठीक है। अब हृदय में भगवान बैठे हैं, है ना, कौन व्यक्ति जो है, हाँ माता जी आप बोलिए जी, जी। भगवान के चक्र ने काटा, तो भगवान का जो चक्र है ना, तो सुतल लोक में जो नीचे के सप्त पाताल हैं वहाँ भी भगवान का चक्र रहता है, क्योंकि वहाँ नीचे पृथ्वी के नीचे जितने बिल स्वर्ग हैं तो यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होती, भगवान का चक्र ही काटता है, भगवान का चक्र ही काटता है, और उनकी स्थिर प्रकार से मृत्यु होती है। तो भगवान के चक्र से मृत्यु होती है तो ऐसा नहीं है कि वो जो है भगवान के धाम चले जाएं, ऐसा नहीं है। तो भगवान के चक्र से कटने से जरूरी नहीं है कि भगवान के धाम चले जाएं, है ना। तो जो हुहु गंधर्व है तो उसका भी स्पर्श किया भगवान ने, भगवान ने स्पर्श किया कि दोनों को लाए, भगवान पहले उसको नहीं मारना चाहते थे घड़ियाल को, भगवान चाहे छोड़ के चला जाए, तो दोनों को बाहर ले आए पानी से। अब वो पानी का जीव है तो पानी के अंदर चला जाना चाहिए उसको, हाथी को छोड़ करके पानी के अंदर चला जाना चाहिए, लेकिन हमने पहले भी शायद बताया था, ग्राह्य का मतलब होता है कि वो ग्रहण करना जानता है, छोड़ना नहीं जानता है, इसलिए उसका नाम ग्राह्य होता है, है ना। तो वो ग्राह्य था तो उसने पैर नहीं छोड़ा, पैर नहीं छोड़ा तो भगवान को काटना पड़ा, है ना। तो भगवान ने काट दिया उसको, तो उसकी चेतना पवित्र हो गई, चेतना शुद्ध हो गई है ना। अब वो क्या है, अगर शुद्ध भक्त बन गया तो शुद्ध भक्त अगर है इस भौतिक संसार में रहे या वैकुंठ में रहे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे पांच पांडव है ना, तो स्वर्ग में गए, पांच पांडव स्वर्ग में गए है ना। तो अब आप कहेंगे भाई अर्जुन है और पांच पांडव स्वर्ग में गए, ये तो भगवान के धाम जाते, तो भगवान के धाम क्यों नहीं गए। तो भक्त जो है होते हैं तो वो इस भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में कोई अंतर नहीं पड़ता। नारायण परा सर्वे ना कुतर्शन विभ्यति स्वर्गाप वर्ग नर के नरगाश अभी अभी तो ल्यार्थ दर्शना है, तो उनके बराबर है। उनके लिए भौतिक जगत में रहना या आध्यात्मिक जगत में रहना बराबर है ना। जैसे कि जो सरकारी कर्मचारी होता है तो वो जेल के अंदर भी रहता है तो भी उसको जेल के अंदर सब सुविधाएं मिलती हैं। वो जेल का जो है कि नियमों पर वो नहीं मतलब बना है, लेकिन जो कैदी है उसके लिए बड़ा अंतर है जेल के अंदर रहना और जेल के बाहर रहना, बड़ा अंतर है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनके लिए कोई अंतर नहीं है। वो भौतिक संसार में रहे हैं या वैकुंठ में रहें कोई अंतर नहीं है ना। जैसे हम लोग शिक्षा अष्टकम का पाठ करते हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कि भाई है कि मुझे आपके हेतु की भक्ति है प्राप्त हो, जन्म जन्म में आपके हेतु की भक्ति प्राप्त हो है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि सुरक्षा होती है तो भगवान की भक्ति में, ठीक है। तो इसलिए अब इच्छा भी क्या होती है कि अब भगवान की इच्छा में उनकी इच्छा मिल जाती है। जो भक्त है उसकी इच्छा जो है भगवान की इच्छा के साथ मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे पांच पांडव हैं वो स्वर्ग गए है ना, तो विचार करो ना, मैंने बताया पांच पांडव स्वर्ग गए क्यों, भगवान की इच्छा के अनुसार। अब भगवान की फिर मैंने आपको बताया है कि अब उनकी इच्छा अपनी इच्छा भी नहीं होती है, है? उनका जो मन भगवान के साथ मिल गया है ना, तो वो क्या इच्छा करेंगे। भगवान की जो इच्छा है वही उनकी इच्छा है, आप समझे ना। भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान से स्वतंत्र भी होते हैं, भगवान उनको स्वतंत्रता भी देते हैं इच्छा करने की, लेकिन साथ साथ जो है जो भक्त हैं अपनी स्वतंत्रता भगवान को सौंप देते हैं कि आपकी जो इच्छा है वो मेरी इच्छा है, उनको दीजिए।
वहां से फिर जो है वो भगवत धाम गए।
जो भी है मतलब कहने का यही है कि उनकी इच्छा जो है भगवान की इच्छा से मिल जाती है। पीछे माइक दीजिए जी।
हरे कृष्णा, अनंत कटी दंडवत महाराज। तो मेरा प्रश्न ये है कि किसी ने अगर किसी भक्त का अगर चरण पकड़ लेता है तो भगवान उसको भी उद्धार कर देते हैं, तो इसमें ये देखा जाता है इस प्रसंग में कि जो घड़ियाल जो हाथी का जो चरण, गजेंद्र का जो चरण ये पकड़ा, तो ये इनका तो उद्देश्य गलत था, इसको तो जान लेने कि ये तो ऐसा नहीं कहा जाता है। तो इसका विषय में थोड़ा ये खुलासा
कीजिए। अच्छा, तो आपका ये प्रश्न है कि चरण
जान ले, ये तो कोई उद्देश्य तो गलत था, उसको जान लेना, उसको जान ही लेना चाहता था। जैसे कोई भक्तों पकड़े तो उसको तो जान ले लेता नहीं लेता है
चरण। हाँ, तो ये चरण पकड़ना ही कहलाता है। जैसे भौतिक संसार में ऐसे ही है, लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं है ना, एक दूसरे को गिराने के लिए टांग खींचते हैं है कि भाई वो मुझसे नीचे हो जाए मैं उसको गिराऊं, मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊं। तो जो है वो पैर खींचना ये भौतिक संसार में इस तरह से होता है कि लोग जो है चरण खींचते हैं है ना। तो हमने अभी कुछ दिन पहले चर्चा की थी स्वरूप दामोदर, और स्वरूप दामोदर थे और वो थे पुंडरीक विद्यानिधि थी, तो वो भी जो है कुश्ती लड़ रहे हैं एक दूसरे के पैर की धूल लेने के लिए, और दोनों एक दूसरे से जो है अपने पैर की धूल नहीं देना चाहते हैं, और दोनों एक दूसरे के पैर की धूल लेना चाहते हैं, तो दोनों में कुश्ती हो गई है ना। तो ये कुश्ती जो है क्या है, ये आनंद देने वाली है। चैतन्य महाप्रभु ने आनंद लिया इस कुश्ती का, दोनों बलवान हैं, दोनों अपने पैर की धूल नहीं देना चाहते और दूसरे के पैर की धूल लेना चाहते हैं, है? तो पैर की धूल लेना है, है? तो यहाँ चरणों को पकड़ने का मतलब ये होता है कि सेवा करना और उनके चरण चिन्हों पर चलना, उनके पीछे पीछे अनुगमन करना, उनकी शिक्षाओं का पालन करना, चरण पकड़ने का ये मतलब होता है, है? लेकिन जो ग्राह था उसने जो पैर पकड़ा वो तो उसने जो है मतलब मार डालने के लिए पैर पकड़ा था, ठीक है ना। तो अक्सर ऐसा होता है कि हाथी जो है मगरमच्छ का पैर पकड़ता है। तो हमने पिछली बार ये बताया था कि ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं कि हाथी किसी हाथी का किसी मगरमच्छ ने पैर पकड़ा और हाथी ने जो है भगवान को याद किया। तो ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं, लेकिन अक्सर हाथी जो सामान्य हाथी होते हैं मगरमच्छ पैर पकड़ते हैं तो फिर वो हाथी को मरना ही पड़ता है। मगरमच्छ जो है फिर पैर पकड़ के नीचे कर देता है और हाथी मर जाता है, तो वो कई दिन तक अपना भोजन उसका करता है, हाथी के शरीर का भोजन करता है मगरमच्छ। तो ये तो मतलब मारने वाली बात होती है, जिसको नहीं कहना कि भी चरण चरण पकड़ा उसने, ठीक है ना। ठीक है, आपका प्रश्न जी, इनको माइक दीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी जिज्ञासा है कि आपने कथा के बीच में बताया कि ध्रुव महाराज ने मृत्यु के ऊपर पैर रखकर विमान पर चढ़ गए, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मृत्यु एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के ऊपर, जैसे जन्म एक प्रक्रिया है मृत्यु एक प्रक्रिया है, तो उसके ऊपर पैर रख के कोई कैसे विमान पर चढ़ सकता है?
हाँ, इनका प्रश्न अच्छा है। मृत्यु एक देवता भी है, मृत्यु देवता भी है, अधर्म के वंश में आता है, अधर्म के वंश में ये सब आता है कि मतलब अधर्म से उसका जो है विवाह हुआ तो मृषा से विवाह हुआ, तो इस तरह से वंश में फिर वो मृत्यु भी आई। और महाराज अंग की जो पत्नी थी सुनीता, वो मृत्यु की कन्या थी, मृत्यु की कन्या थी, तो मृत्यु भी जो है एक देवता भी है, मृत्यु का देवता है, है ना। तो मृत्यु के सिर पर पैर रखा तो वास्तव में वो मृत्यु ने जो है मतलब अपना सिर रख दिया कि मेरे सिर के ऊपर आप पैर रखिए और विमान में जाइए, क्योंकि ये भौतिक शरीर जन्म है, है? तो क्या होता है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये भौतिक शरीर है के रूप में जो जब जन्म मिलता है हमको, तो ये शरीर छोड़ना भी पड़ेगा, ये नष्ट भी होगा। तो आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है कि मतलब ध्रुव महाराज का शरीर पैदा हुआ, छठवां परिवर्तन नहीं हुआ, मृत्यु का परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो पैदा हुआ और फिर उत्पत्ति के बाद वृद्धि बड़ा हुआ और फिर उत्पत्ति वृद्धि अस्तित्व और प्रजनन क्षय, तो ये सब परिवर्तन हुए, लेकिन उसमें ध्रुव महाराज के शरीर में मृत्यु का परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो मृत्यु एक देवता भी है, तो उन्होंने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वैकुंठ गमन किया। तो सामान्यतः गजेंद्र का है तो शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ करके उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ और वैकुंठ गए। तो वैकुंठ जाने के लिए आपको वैकुंठ का शरीर होना चाहिए, तो आपको ये भौतिक शरीर छोड़ना होगा। अजामिल का भी हरिद्वार में, तो उन्होंने अजामिल ने अपना शरीर छोड़ा और इसी प्रकार का शरीर प्राप्त किया, चतुर्भुज शरीर पीत वस्त्र धारण किए और तब वैकुंठ में गए। तो सामान्यतः यही होता है कि वैकुंठ में जाने के लिए हमें वैकुंठ का शरीर प्राप्त करना होगा और ये शरीर छोड़ना होगा, ठीक है। तो ध्रुव महाराज की एक विशेष ये बात है कि उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा, ठीक है ना।
प्रभु जी, इससे एक प्रश्न और उठता है कि जिस प्रकार ध्रुव महाराज एक वैष्णव है और आप बता रहे हैं कि मृत्यु एक देवता है, तो एक वैष्णव एक दूसरे वैष्णव के ऊपर कैसे पैर रख सकता है?
नहीं, यहाँ पर वो पैर रखने का वो भाव नहीं है कि उनको दबाना है या उनका अपमान करना है, वो चीज़ नहीं है, बल्कि मृत्यु के सिर पर पैर रखने का मतलब है कि मृत्यु देवता ने स्वयं अपना सिर रख दिया। और इस तरह से तो पैर रखा जाता है, और अगर पैर रखने का जो है उनको वो बना कि विमान पर चढ़ना है, तो एक सीढ़ी जैसा अगर वो मृत्यु ने उनको सीढ़ी बना दिया, ठीक है ना, तो विमान में चढ़ने के लिए वो सीढ़ी की तरह उन्होंने काम किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं पैर ना रखे। अब जैसे भगवान राम ने पैर स्पर्श किया, तो किसी का भला करने के लिए, किसी की खुशी के लिए कोई अपना पैर जो है पुजवाता भी है। प्रभुपाद अपना पैर पुजवाते हैं, अपने पैर की पूजा कराते हैं, तो आप क्या कहेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है होती हैं आदर पूर्वक होती हैं, है? तो कोई व्यक्ति आदर पूर्वक अपनी पूजा भी कराता है, और जो पूजा करने वाला वो अपना सम्मान समझता है कि आपने मेरा इतना सम्मान किया कि अपने पैरों की पूजा कराई, तो ये भी सम्मान है एक प्रकार। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।